नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9RT के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डैक्स पैटर्न्स सेकंड एडिशन मार्को रूसो और अल्बर्टो फेरारी की डैक्स पर केंद्रित एक व्यावहारिक संदर्भ पुस्तक है। यह माइक्रोसॉफ्ट पावर BI एनालिसिस सर्विसेज टैबुलर और एक्सेल के पावर पिवट में डेटा मॉडल के लिए गणनाएं बनाने की समस्याओं को संबोधित करती है। इसका विषय किसी एक डैशबोर्ड का निर्माण नहीं, बल्कि बार बार आने वाली विश्लेषणात्मक जरूरतों के लिए पुनःप्रयोग योग्य समाधान अर्थात पैटर्न उपलब्ध कराना है। पुस्तक का दूसरा संस्करण लगभग 30 पैटर्नों को व्यवस्थित करता है, जिनमें समय आधारित गणनाएं, संचयी कुल, ग्राहक विश्लेषण, वर्गीकरण, रैंकिंग, पदानुक्रम, मुद्रा रूपांतरण और बजट शामिल है। इसका उद्देश्य पाठक को केवल डैक्स सूत्रों की सूची देना नहीं है, यह दिखाती है कि किसी व्यापारिक प्रश्न के पीछे मौजूद फिल्टर संदर्भ, तारीख तालिका, संबंधों और मापों की संरचना को कैसे समझा जाए। इसलिए यह पुस्तक डैक्स के शुरुआती परिचय की अपेक्षा उन विश्लेषकों और मॉडलरों के लिए अधिक उपयोगी है जिन्हें विश्वसनीय, अनुकूलनीय और वास्तविक रिपोर्टों में लागू होने वाले गणना समाधान चाहिए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, समय बुद्धिमत्ता को तैयार सूत्र नहीं, सही तारीख संरचना के रूप में समझना। पुस्तक का बड़ा हिस्सा समय संबंधी पैटर्नों को देता है, क्योंकि बिक्री, लागत, स्टॉक और प्रदर्शन की अधिकांश रिपोर्टें किसी पूर्व अवधि से तुलना मांगती है। इसमें मानक समय गणनाओं के साथ महीने, सप्ताह और विशेष व्यावसायिक कैलेंडर से जुड़ी स्थितियों को अलग पैटर्नों के रूप में रखा गया है। यह विभाजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैलेंडर वर्ष, वित्तीय वर्ष और सप्ताह आधारित संचालन एक जैसे फिल्टर नियमों से काम नहीं करते। उदाहरण के लिए, महीने की तुलना में केवल पिछली तारीख चुनना पर्याप्त नहीं होता, जब रिपोर्ट का उद्देश्य समान अवधि, वर्ष से अब तक का परिणाम या अपूर्ण वर्तमान अवधि की निष्पक्ष तुलना हो। पैटर्न दृष्टिकोण पाठक को तारीख तालिका की भूमिका, वर्तमान चयन के अर्थ और माप के मूल्यांकन संदर्भ पर ध्यान देने के लिए बाध्य करता है। इससे समय बुद्धिमत्ता को जादुई अंतर्निर्मित सुविधा मानने की गलती कम होती है। पुस्तक का व्यावहारिक मूल्य इस बात में है कि वह सामान्य समय प्रश्नों को अलग अलग परिस्थितियों में रखती है, ताकि मॉडलर अपने कैलेंडर और रिपोर्टिंग नियमों के अनुरूप समाधान चुन सके। इस तरह परिणामों की तुलना अधिक संगत बनती है और रिपोर्ट में दिखने वाले भ्रामक उतार चढ़ाव की संभावना घटती है। दूसरा, संचयी कुल और सेमी एडिटिव मापों में जोड़ने की सीमा। संचयी कुल का पैटर्न समय के साथ किसी माप का चलित योग दिखाने के लिए उपयोगी है, जैसे वर्ष के आरंभ से बिक्री या किसी अवधि तक प्राप्त बजट। लेकिन पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि हर संख्या को साधारण योग से नहीं जोड़ा जा सकता। सेमी एडिटिव गणनाएं इसी सीमा को संबोधित करती है। किसी स्टॉक बैलेंस, बैंक शेष या दैनिक कर्मचारी संख्या को कई तारीखों पर जोड़ देने से कृत्रिम रूप से बड़ा परिणाम बन सकता है, जबकि विश्लेषण को अक्सर अवधि की अंतिम उपलब्ध तारीख का मान चाहिए होता है। यहाँ कठिनाई केवल डैक्स वाक्य रचना की नहीं, बल्कि माप के व्यावसायिक अर्थ की है। पैटर्न मॉडलर को पहले यह तय करने में सहायता करते हैं कि तथ्य प्रवाह है, जैसे बिक्री, या किसी समय बिंदु की स्थिति है, जैसे इन्वेंट्री। उसके बाद तारीख फिल्टर को किस सीमा तक हटाना, रखना या बदलना है, यह निर्णय लिया जाता है। संचयी कुल और सेमी एडिटिव पैटर्न को साथ पढ़ने पर एक अहम अनुशासन उभरता है। दृश्य में सुंदर रेखा या कुल दिखना पर्याप्त नहीं है, माप को विभिन्न समय स्तरों पर भी सही अर्थ देना चाहिए। यही अनुशासन मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों के बीच गणनात्मक विरोधाभास घटाता है। तीसरा, सेगमेंटेशन और ABC वर्गीकरण से स्थिर श्रेणियों को गतिशील विश्लेषण में बदलना। पुस्तक स्थिर सेगमेंटेशन, गतिशील सेगमेंटेशन और ABC वर्गीकरण को अलग पैटर्नों के रूप में प्रस्तुत करती है। इनका साझा उद्देश्य विस्तृत पंक्ति स्तर के डेटा को ऐसी श्रेणियों में बदलना है जिनसे निर्णय लेना सरल हो, पर तीनों की कार्यविधि अलग है। स्थिर सेगमेंटेशन में उत्पाद, ग्राहक या लेन देन को पहले से तय सीमाओं के आधार पर समूहित किया जा सकता है। इसके विपरीत गतिशील सेगमेंटेशन में श्रेणी चयनित अवधि और मौजूदा फिल्टर के साथ बदल सकती है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ग्राहक का वार्षिक मूल्य सेगमेंट और किसी चुने हुए क्षेत्र या महीने में उसका मूल्य सेगमेंट समान नहीं होगा। ABC वर्गीकरण आमतौर पर योगदान के आधार पर वस्तुओं को प्राथमिक समूहों में बांटने की जरूरत से जुड़ा है। इसका उपयोग यह पहचानने में होता है कि कुल परिणाम का बड़ा हिस्सा किन उत्पादों या ग्राहकों से आता है। पुस्तक का पैटर्न आधारित उपचार यह संकेत देता है कि वर्गीकरण केवल लेबलिंग नहीं है। सीमा, रैंक, संचयी योगदान और फिल्टर संदर्भ के फैसले अंतिम वर्ग को बदलते हैं। इसलिए इन पैटर्नों को अपनाते समय संगठन को श्रेणियों का व्यावसायिक उद्देश्य पहले तय करना चाहिए। तभी रिपोर्ट प्राथमिकता निर्धारण, पोर्टफोलियो विश्लेषण और संसाधन आवंटन के लिए विश्वसनीय आधार बनती है। चौथा, नए और लौटने वाले ग्राहक। इवेंट्स इन प्रोग्रेस और रिलेटेड डिस्टिंक काउंट की अलग गणनात्मक तक्षशैली। ग्राहक और प्रक्रिया विश्लेषण में कई प्रश्न साधारण बिक्री योग से हल नहीं होते। पुस्तक के नए और लौटने वाले ग्राहक, इवेंट्स इन प्रोग्रेस और रिलेटेड डिस्टिंक काउंट पैटर्न इस चुनौती के अलग रूपों को संभालते हैं। नया ग्राहक निर्धारित अवधि में पहली बार गतिविधि करने वाला हो सकता है, जबकि लौटने वाले ग्राहक की पहचान के लिए उस अवधि से पहले की गतिविधि देखनी पड़ती है। इसलिए परिभाषा को केवल वर्तमान दृश्य की पंक्तियों से नहीं निकाला जा सकता। इवेंट्स इन प्रोग्रेस पैटर्न उन घटनाओं के लिए है जिनकी शुरुआत और समाप्ति तारीख अलग होती है, जैसे खुले ऑर्डर, सक्रिय अनुबंध या जारी मामले। यहां प्रश्न यह नहीं कि किसी दिन कितनी घटनाएं शुरू हुईं, बल्कि यह है कि चुनी गई तारीख पर कितनी घटनाएं सक्रिय थीं। रिलेटेड डिस्टिंक्ट काउंट का उद्देश्य संबंधों के पार अद्वितीय इकाइयों को सही ढंग से गिनना है, जहां प्रत्यक्ष गणना दोहराव या गलत फिल्टर परिणाम दे सकती है। इन पैटर्नों का महत्व इस बात में है कि वे विश्लेषक को डेटा की घटना संरचना समझने पर मजबूर करते हैं। सही परिणाम के लिए पहली गतिविधि, सक्रिय अवधि, संबंधों की दिशा और अद्वितीय पहचान चारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। पुस्तक इन्हीं बार बार आने वाली जरूरतों के लिए पुनः प्रयोग योग्य सोच प्रदान करती है। अंत में पैरामीटर तालिकाएं, पदानुक्रम और तुलना पैटर्नों से रिपोर्ट की नियंत्रित लचीलापन। डैशबोर्ड में लचीलापन उपयोगी है, लेकिन अनियंत्रित विकल्प अक्सर अस्पष्ट गणनाएं पैदा करते हैं। पुस्तक की पैरामीटर तालिका, रैंकिंग, पदानुक्रम, पैरेंट चाइल्ड पदानुक्रम, लाइक फॉर लाइक तुलना, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, मुद्रा रूपांतरण और बजट से जुड़ी सामग्री इस व्यावहारिक संतुलन को संबोधित करती है। पैरामीटर तालिका उपयोगकर्ता के चयन को माप की गणना से जोड़ने का एक संरचित माध्यम देती है, जैसे किसी सीमा, परिदृश्य या तुलना विकल्प को बदलना। पदानुक्रम पैटर्न संगठनात्मक या श्रेणी संरचना में अलग स्तरों पर परिणाम दिखाने की समस्या से जुड़े हैं, जबकि पैरेंट चाइल्ड संरचनाएं उन मामलों के लिए प्रासंगिक है जहां स्तरों की गहराई समान नहीं होती। लाइक फॉर लाइक तुलना इस प्रश्न को सटीक बनाती है कि क्या दो अवधियों की तुलना वास्तव में समान इकाइयों पर हो रही है। जैसे दोनों अवधियों में सक्रिय रही दुकानें, मुद्रा रूपांतरण और बजट पैटर्न भी इसी तरह वास्तविक रिपोर्टिंग बाधाओं को मापों में बदलते हैं। इन विषयों का संयुक्त संदेश है कि डैक्स मॉडल केवल आंकड़े प्रदर्शित करने का माध्यम नहीं है, वह चयन, संरचना, तुलना नियम और व्यावसायिक परिभाषा को लागू करने वाला विश्लेषणात्मक तंत्र है। पैटर्न पाठक को ऐसे तंत्र को दोहराने योग्य और जांचने योग्य ढंग से बनाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष में, डैक्स पैटर्न्स सेकंड एडिशन उन पावर बीआई डेवलपर्स, बिजनेस इंटेलिजेंस विश्लेषकों, डेटा मॉडलरों और एनालिसिस सर्विसेज या पावर पिवट उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो डैक्स की मूल बातें सीख चुके हैं और अब वास्तविक विश्लेषणात्मक समस्याओं पर काम कर रहे हैं। विशेष रूप से यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें हर परियोजना में समय तुलना, संचयी परिणाम, ग्राहक स्थिति, उत्पाद वर्गीकरण, बजट या मुद्रा संबंधी गणनाओं को फिर से डिजाइन करना पड़ता है। पुस्तक का लाभ केवल तैयार मापों तक सीमित नहीं है, या पाठक को यह पहचानने का अभ्यास कराती है कि किसी समस्या में तारीख, संदर्भ, संबंध, अद्वितीय गणना, श्रेणी सीमा या पदानुक्रम का कौन सा पक्ष निर्णायक है। इससे सूत्रों की नकल करने के बजाय उन्हें स्थानीय डेटा मॉडल के अनुसार ढालने की क्षमता विकसित होती है। समान विषय की कई पुस्तकों में डैक्स कार्यों की परिभाषाएं, भाषा के नियम या शुरुआती उदाहरण प्रमुख होते हैं। यह पुस्तक अलग इसलिए है कि इसका संगठन व्यावसायिक समस्याओं के पुनः प्रयोग योग्य पैटर्नों के आधार पर है। समय आधारित गणनाओं से लेकर एबीसी वर्गीकरण, सक्रिय घटनाओं और लाइक फॉर लाइक तुलना तक इसकी विषय सीमा व्यापक है, फिर भी प्रत्येक भाग का लक्ष्य लागू करने योग्य समाधान है। दूसरा संस्करण डैक्स के विकसित कार्य समूह के अनुसार सामग्री को अद्यतन करता है और पहले संस्करण के कुछ कम प्रासंगिक सांख्यिकीय पैटर्न हटाता है। इसे त्वरित आरंभिक पाठ्य पुस्तक नहीं, बल्कि गंभीर मॉडलिंग कार्य के दौरान बार बार खोले जाने वाले तकनीकी संदर्भ के रूप में पढ़ना सबसे उचित होगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्को रूसो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।